कार के बाहर खड़ी अदिति के अंदर जैसे तूफान चल रहा था। आर्यन की बातों ने उसके दिल के अंदर दबा हुआ सच पूरी तरह जगा दिया था। झूठ पर घर टिकेगा, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और खुद से बुदबुदाई, नहीं, अब और नहीं। उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ साथ एक फैसला भी दिख रहा था। गलती मैंने की है तो सच भी मुझे ही कहना होगा। उसने तुरंत फोन उठाया और आर्यन को दोबारा कॉल किया। कॉल उठते ही उधर से वही सख्त आवाज आई,
मैं पापा को अभी फोन कर रहा हूं अदिति।
नहीं, अदिति लगभग चिल्ला पड़ी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या मतलब नहीं? आर्यन की आवाज थोड़ी धीमी हुई। अदिति ने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए बोली, तुम नहीं बताओगे, ये सच मैं खुद बताऊंगी। अदिति, ये कोई छोटा फैसला नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूं। उसकी आवाज अब मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि ये मेरी गलती है और उसकी सजा भी मुझे ही झेलनी चाहिए। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, और अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तो? अदिति की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। तो वो उनका हक होगा, लेकिन कम से कम मैं खुद से नजरें तो मिला पाऊंगी। फोन के उस पार फिर कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आर्यन ने लंबी सांस ली। तुम समझ रही हो ना तुम क्या करने जा रही हो? हाँ, अदिति ने बिना हिचक जवाब दिया, और पहली बार सही करने जा रही हूं। आर्यन अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब, कहीं सब कुछ हाथ से निकल गया तो? अदिति ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, अगर सच नहीं बताया तो सब पहले ही हाथ से निकल चुका है। आर्यन चुप, फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन मैं पास ही रहूंगा। नहीं, अदिति ने फिर रोका, ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी है। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिरकार आर्यन मान गया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता है, अदिति की आवाज नरम हो गई। कॉल कट गया। अदिति ने फोन नीचे किया और हवेली की तरफ देखा। अब जो होगा सच के साथ होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बात सिर्फ उसके और आर्यन के बीच नहीं रही। हवेली के एक कोने में दीवार के पीछे खड़ी एक औरत ने सब कुछ सुन लिया था। उसके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि गहरी चिंता थी। वो बिना समय गवाए तेज कदमों से अंदर बढ़ी, सीधे अक्षरा के कमरे की तरफ। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर अक्षरा आईने के सामने खड़ी थी, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। अक्षरा, उसने धीमी आवाज में पुकारा। अक्षरा पलटी, क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? वो अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। जो मैंने अभी सुना है वो तुम्हें जानना जरूरी है। अक्षरा का दिल धड़क उठा। क्या? फिर उसने एक एक बात बता दी। अदिति, सच, आर्यन और विश्वनाथ तक सब कुछ पहुंचने का खतरा। कुछ सेकंड के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। अक्षरा जैसे जड़ हो गई। फिर उसने धीरे से कुर्सी पकड़ी और बैठ गई। ये अदिति आखिर चाहती क्या है? उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। सुबह तो बड़ी मुश्किल से उसे समझाया था, मान भी गई थी। उसने होंठ भींचे, लेकिन फिर वही बात, ये लड़की खुद भी डूबेगी और सबको साथ ले डूबेगी। माँ ने गंभीर आवाज में कहा, मामला सिर्फ अदिति का नहीं है, आर्यन हो भी सब पता है। अक्षरा ने तुरंत सिर उठाया। हाँ, उसने सिर हिलाया, अगर अदिति नहीं बोलेगी तो वो जरूर बोलेगा। अब अक्षरा की बेचैनी बढ़ गई। उसने माथा पकड़ लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इस पागल लड़के का दिमाग खराब है क्या? माँ ने थोड़ा तीखा कहा, तुम जैसी लड़की उसकी माँ बनने वाली है, फिर भी उसे वो शामली ही चाहिए। अक्षरा हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। आप नहीं जानती माँ, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, आर्यन ऐसा क्यों कर रहा है? माँ ने भौहें से कोड़ ली, तो तुम जानती हो? अक्षरा ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे सच खोलना शुरू किया। शामली सिर्फ इस घर की बहू नहीं थी, वो आर्यन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें फैल गईं। क्या? अक्षरा ने सिर हिलाया। हाँ, शादी से पहले दोनों साथ थे। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि शामली की शादी विश्वनाथ से हो गई। माँ अब भी शौक में थी। तो इसका मतलब? अक्षरा ने उसकी बात पूरी की। इसका मतलब आर्यन आज भी उसे अपने तरीके से चाहता है। उसकी आवाज में हल्की कड़वाहट थी। वो चाहता है कि शामली को अच्छा घर मिले, सम्मान मिले। फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई, और अगर कभी मौका मिला, वो हल्का सा मुस्कुराई, तो वो उसे अपने पास भी रखना चाहता है। माँ ने अविश्वास से उसे देखा। तुम ये सब जानती हो फिर भी? अक्षरा ने ठंडे अंदाज में कहा। इस घर में रहने के लिए हर सच जानना जरूरी होता है माँ। कुछ पल की खामोशी, फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन अब मामला हाथ से निकल रहा है। माँ ने चिंतित होकर पूछा, तो अब क्या करोगी? अक्षरा ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक चालाक शांति थी। अब, उसने धीरे से कहा, अदिति को समझाना नहीं पड़ेगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, उसे रोकना पड़ेगा।
कमरे में एक ठंडी खामोशी फैल गई। बाहर हवेली के गलियारों में अदिति सच बोलने के लिए कदम बढ़ा रही थी और अंदर कोई उस सच को हमेशा के लिए दबाने की तैयारी कर रहा था। तूफान अब सिर्फ आने वाला नहीं था, वो हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। अदिति तेज कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा बंद करते ही उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को टूटने से रोक रही थी। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन आंखों में वही फैसला कायम था। अब पीछे नहीं हट सकती, उसने खुद से कहा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, स्क्रीन पर कुछ पल उंगलियां ठहरी, फिर उसने नाम चुना, विश्वनाथ। कॉल बटन दबाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रिंग ट्रिंग, हर रिंग के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। उठाइए प्लीज उठाइए, वो बुदबुदाई। लेकिन कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर वही शब्द चमके, कॉल फेल्स। अदिति के चेहरे का रंग उतर गया। नहीं अभी नहीं, उसने घबराकर दोबारा कॉल लगाया। इस बार भी वही कॉल नहीं लगा। उसने होंठ भींच लिए, आंखों में फिर से नमी उतर आई। क्या करूं अब, उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वो बेचैनी में कमरे में टहलने लगी, फिर अचानक रुक गई। नहीं अब भागना नहीं है, उसने फिर से फोन कसकर पकड़ा, जैसे इस बार कुछ भी हो जाए वो सच कहकर ही रहेगी। तभी क्लिक, दरवाजा धीरे से खुला। अदिति का हाथ वहीं रुक गया। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा, दरवाजे पर अक्षरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना घबराहट, बस एक अजीब सी शांत मुस्कान। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अदिति की उंगलियां फोन पर जमी रह गई, कॉल करने का बटन दबाने से ठीक पहले। अक्षरा ने दरवाजा अंदर से बंद किया। टक, आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। दोनों की नजरें मिली, एक तरफ सच बोलने का हौसला, दूसरी तरफ उसे रोकने की खामोश चाल। और उसी पल